कृष्णा, ये अच्छा है ना, थोड़ा शांति है। सब ब्रह्मचारी भक्त आ रहे हैं कोई और? अच्छा, कितने ब्रह्मचारी हैं कुल मिलाकर?
15।
अच्छा, हाँ, सैफरन में तो कोई और है ना? हाँ, अच्छा, अच्छा अच्छा सुबह को भी कितने सैफरन ब्रह्मचारी देखे मैंने। पुजारी है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ये क्या, ये हम लोग का, ये यहाँ का रिकॉर्डिंग है या यहाँ का रिकॉर्डिंग? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा, तमे बद्धा केम छो, मजा में छो ने? कृष्ण भावनामृत में छो? हाँ, अभी अभी मैं कह रहा था थोड़े भक्तों को देखकर कि आपका जप बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि सब बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। भगवत प्रभुपाद जी ने क्या कहा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी सैड, ऐसे बोला ना? फिर क्या बोला प्रभुपाद जी ने, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो हरे कृष्णा चैंट करने का परिणाम क्या है कि हम खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो जो अच्छी तरह से नाम लेता है भगवान का, अपने आप वो सुखी होता है, खुश होता है। साची बात छे, बराबर छे ना? सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हमारे सफलता और सुख का रहस्य यही है। दृढ़ता, आप सबको दृढ़ता के बारे में सुनना था ना? दृढ़ता के बारे में कोई श्लोक आप बोल सकते हैं? हाँ, कौन सा? आगे पूरा श्लोक बोलो। बहुत अच्छा, तो इसका तात्पर्य क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदन। तो क्या अर्थ है इसका? तो जिसकी बुद्धि एकाग्र है तो उसकी बुद्धि बहुत सुदृढ़ होती है। एकेह, एक चीज में लगी हुई होती है, अर्थात आध्यात्मिकता में। दूसरी ओर बहुशाखा ही अनंताश्च, और दूसरी ओर जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं उनकी बुद्धि बटी हुई होती है अलग अलग चीजों में। इस भौतिक जगत में सब लोग, जिनका मन जो है बिखर गया इधर उधर इधर उधर, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, है ना? तो इसलिए मन स्थिर नहीं रहता है। हाँ, हरे कृष्णा। क्यों? मनोरथे नासति धावतो बही। भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल अपने मन के आधार पे कार्यों को करता है, उसकी दुनिया की दृष्टि केवल मन पे आधारित है, तो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो एक रथ में बैठा हुआ है जिस रथ का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे कल्पना कर लो कि एक रथ है जिसके 3-4-5 घोड़े हैं, और सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, क्या हालत होगी रथ की? और रथ के अंदर बैठने वाले व्यक्ति की क्या हालत होगी? जब चार पांच घोड़े एक साथ दौड़ रहे होते हैं तालमेल करके, तब रथ जो है अच्छी तरह से आगे चल सकता है। परंतु जब पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में जाएंगे तो क्या दशा हो जाएगी? तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है सुदृढ़ता से, वो ऐसे ही मन के रथ पे सवार होकर इधर उधर भटकेगा दुनिया में। और ऐसे ही हम करते आए हैं अनादि काल से, कितने लाखों 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 जन्म बीत गए हमारे, अनगिनत जन्म बीत गए, और हमको पता नहीं हर जन्म में हम कौन थे, क्या कर रहे थे। परंतु इतना निश्चित है, मनोरथे नास्ति धावतो बहिः, मन के रथ पे सवार होकर भटक रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई एक दिशा नहीं जीवन में, कोई दृढ़ता नहीं किसी बात में, और जीवन का सत्य, जीवन का मूल्य का ज्ञान नहीं। और अब इतने जन्मों के बाद में हमारा परम सौभाग्य है कि हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुआ है और कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का संपर्क हुआ है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। तो अभी हमें ये एक अवसर है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना। तो इस श्लोक को सार्थक करने के लिए हमारे जीवन में ये एक बहुत मूल्यवान उपाय है। श्रील भक्ति चारू महाराज बताया करते थे कि जब वो पहली बार प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप एक अच्छे नौजवान पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, तुमने इतने सारे जन्म माया के लिए दिए, अब ये एक जन्म कृष्ण के लिए दे दो। तो भी आप सबने कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, किया है ना, आगे तक करना चाहते हैं ना, अंत तक करना चाहते हैं ना। तो जब अपना जीवन समर्पित किया है तो अभी सुदृढ़ता से करना चाहिए, सुदृढ़ होकर। एक गुरु नंदना व्यवसायात्मिका बुद्धि ही। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में इस श्लोक के कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि ही का अर्थ है वो बुद्धि जो गुरु परंपरा के आदेशों पर चलती है। तो गुरुजनों का आदेश का पालन करना, यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है। बस आज सुबह ही एक भक्त हमको मिले थे, तो वो पूछ रहे थे हमको कि चाय नहीं छूट रही हमें, कितनी बार हम सुनते हैं लेकिन मन नहीं करता चाय छोड़ने के लिए। हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मन नहीं करता। तो हमने कहा कि मन क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु साधु शास्त्र क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। मन चाहे जो भी कुछ कहे, जो गुरु साधु शास्त्र कहते हैं वो हमें करना चाहिए, ये है दृढ़ निश्चय। हमें गुरु साधु शास्त्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, फिर जो भी वो कहते हैं वो हम करेंगे। जैसे अभी हम किसी देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, अब सरकार ने कोई नियम बनाया है, कोई कायदा कानून बनाया है। अभी हम अच्छे नागरिक होने के कारण जानते हैं कि सरकार ने बनाए हुए कानूनों का पालन करना चाहिए, यदि कानून का पालन नहीं किया तो हम गुनहगार बन जाते हैं। तो गुनहगार का मतलब है कि हमें दंड मिलेगा। तो भले हमें किसी कानून का पालन करना अच्छा लगे या न लगे, हम पालन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भलाई के लिए है। और हम मानते हैं कि ये सरकार है, इनकी अध्यक्षता में हमको यहाँ रहना है इस देश में, तो इसलिए हम पालन करते हैं। जब हम जल्दी में होते हैं तो लाल बत्ती में गाड़ी रोकना पसंद नहीं करते हैं, मन नहीं चाहता है कि गाड़ी वहाँ लाल बत्ती में रोक दे। परंतु यदि हमारे मन की बात मानी और कानून को नहीं का पालन नहीं किया तो हम गाड़ी निकाल लेंगे लाल बत्ती से, और सामने से दूसरी दिशा से गाड़ी आएगी, टक्कर हो जाएगा, एक्सीडेंट, कितना नुकसान हो जाएगा, या टक्कर नहीं भी हुआ तो फिर दंड मिल जाएगा पुलिस वालों से, तो समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चाहे आपका मन करे या न करे कि चाय छोड़ दो, आपको मालूम है ना कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चाय छोड़ना चाहिए। आपको गुरु साधु शास्त्र में भरोसा है कि नहीं है, है तो फिर उन वो जो कहते हैं वो पालन करो, छोड़ दो। ये मन के प्लेटफॉर्म पे, मन के स्तर पे मत रहो कि मन नहीं कहता, मन कहता है। ये मन की क्या कीमत है, है ना? मन की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे ना कि रोज उठ के जूते से और रात को सोते समय झाड़ू से अपने मन को पीटा करो। मतलब ऐसे नहीं कि चप्पल लेके सर को मारो, इसका मतलब है कि मन की परवाह नहीं करो, ये तात्पर्य है। ऐसा ना हो कि अगर भी घर में जाके आप चप्पल लेके अपना ये पीटो, ऐसा नहीं है। परंतु मन बहुत चंचल है, मन के वह मन के बातों पे विश्वास नहीं करना। अब मन कुछ कहता है, अगले क्षण मन कुछ दूसरा कुछ कहेगा, संकल्पो विकल्पो मनः, मन का काम है स्वीकार करना त्यागना, स्वीकार करना त्यागना, यही मन करते रहता है अनादिकाल से। तो इसलिए मन दृढ़ नहीं हो सकता है। और यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो फिर मन को भगवान की सेवा में लगाना है। जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। हम किसी की सेवा में हों, जैसे कोई कर्मचारी किसी कारखाने में, किसी ऑफिस में काम करता है, तो जैसे मालिक कहता है उसको करना चाहिए ना, नहीं तो सेवक बनने का मतलब क्या है। तो उसी तरह से हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं तो भगवान जो कहते हैं हमें करना चाहिए, नहीं तो फिर भक्त या सेवक बनने का मतलब क्या है। तो हम स्वीकार करते हैं जो भी कुछ भगवान कहते हैं, जो कि भगवान के प्रतिनिधि कहते हैं वो भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगाने से मन स्थिर हो जाता है, धीरे 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 से, एकदम से नहीं, क्रमशः, क्रम से। और फिर मन हमारा मित्र बन जाता है, और जब मन मित्र बन जाता है तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे मन को मित्र बनाने की बात भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? हाँ, बहुत अच्छा, आओ इधर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका मतलब क्या है? यदि हमने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो मन हमारा मित्र बनेगा। यदि मन के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया तो मन हमारा शत्रु बनेगा। तो इतने जन्मों से मन को शत्रु बना के आए हैं हम। अभी व्यवसायात्मक बुद्धि का अर्थ है मन को दोस्त बनाना, मित्र बनाना। कैसे? भगवान की सेवा में मन को लगाकर, तो सेवा मतलब आदेश का पालन करना। जैसे मालिक कह रहा है भाई मेरे को पानी पिलाओ, नहीं नहीं आप दूध पियो, अरे मेरे को पानी चाहिए, मैं बोल नहीं 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 आपको दूध पीना चाहिए, नहीं ये कैसी सेवा हो गई। नहीं तो भगवान कहते हैं कि चाय मत पियो, नहीं नहीं मन नहीं करता, नहीं छोड़ना चाहिए चाय को। तो इस प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान और उनके प्रतिनिधियों के आदेशों का पालन करेंगे, धीरे 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 से मन नियंत्रण में आ जाएगा और फिर मन हमारा मित्र बनेगा। और ऐसे मित्र मन को लेकर हम भगवान को जीत सकते हैं भक्ति में। ऐसी दृढ़ता आती है, दृढ़ता आती है इस जानकारी से, इस निष्ठा से कि भगवान के आदेशों का पालन मुझे करना ही करना है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है, बस यही मेरे को करना है। तो इस तरह से हम दृढ़ बन सकते हैं। दूसरी बात, दृढ़ भक्तों का संग, क्योंकि अकेले में ये सारी चीजें करना बहुत कठिन है, परंतु भक्तों के संग में रहेंगे जहां पे वातावरण ऐसे रहेगा कि सभी लोग दृढ़ता से कर रहे हैं या कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी शक्ति मिलती है। कलयुग में संग का बहुत महत्व है। सत्ययुग त्रेता युग आदि में लोग अकेले में जाके तपस्या कर सकते थे, कलयुग में ये संभव नहीं है। उतनी हमारी बौद्धिक शक्ति नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है, तपस्या करने की क्षमता नहीं है। परंतु भक्तों के संग में रहने से हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है पालन करने के लिए। प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी कहानी बताई थी। एक बार हुआ ये कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके चार लड़के थे। अब ये आदमी मृत्युशैया पे लेटा हुआ था, मतलब किसी भी समय उसकी मृत्यु होनी थी। तो उसको चिंता थी अपने चार बेटों के बारे में। क्या चिंता थी? कि ये चार बेटे जो हैं आपस में झगड़ते बहुत हैं। तो अब क्या किया जाए, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जीते जी भी मैं किसी न किसी तरह से संभाल रहा हूँ इनको, फिर भी मेरे सामने भी झगड़ रहे हैं, मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी लकड़ियाँ लाई, छोटी छोटी सी ऐसे पतली वाली लंबी सी इतनी सी, और एक एक को दे दिया एक एक लकड़ी और कहा कि ऐसे पैर पे ऐसे करके उनको तोड़ने का प्रयास करो। तो हर एक ने अपने अपने अकेले अकेले किया, आसानी से वो टूट गया। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लकड़ियां ली, उसी तहर के लकड़ियां पतली पतली वाली लंबी वाली, लेकिन उनको बांध दिया, गट्ठा बना दिया उनको, उनको बांध दिया, बांध के कहा अब उसी तरह से इनको तोड़ो। नहीं तोड़ पाए, आप समझ गए ना कैसे गट्ठा हो गया इतना बड़ा, फिर वो नहीं टूटा। तो फिर पिताजी ने बच्चों से पूछा कि आप समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या शिक्षण है इस कहानी से। हाँ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अच्छी बात। तो कैसे कैसे इसे समझ सकते हैं, बहुत अच्छा। तो वो पिताजी ने लड़कों को कहा आप साथ में रहोगे, सहयोग की भावना से कोऑपरेटिव स्पिरिट में रहोगे तो अच्छी तरह से सब चलेगा, आप अकेले अकेले रह जाओगे टूट जाओगे, एक लकड़ी करो टूट जाएगा, साथ में रहोगे नहीं टूटते नहीं टूटोगे, सबका लाभ होगा इसमें, जितने भी लकड़ियां हैं सबको फायदा होगा, लकड़ियां अलग अलग हो जाएंगी सारे लकड़ियां टूट जाएंगी। उसी प्रकार से हम भक्तों के संग में रहते हैं, हम अकेले अकेले रहने लगे स्वतंत्र भावना से, तो फिर हम टूट जाएंगे माया के सामने। परंतु सब इकट्ठे रहेंगे, हर एक भक्त से, अन्य भक्तों से हर एक भक्त को शक्ति मिलेगी। तो इसलिए हम हैं, हमको दूसरों से शक्ति मिल रही है, दूसरा है उसको भी सबसे शक्ति मिल रही है। इस प्रकार से हमें दृढ़ बना रहना ये आसान हो जाता है। तो ऐसे हमें बस आदेशों का पालन करना है और एक दूसरे की मदद करनी है दृढ़ता से ये पालन करने के लिए। जब हम देखते हैं कि कोई हमारे मित्र जो आश्रम में रह रहे हैं वो थोड़ा ढीला हो रहे हैं भक्ति में, कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उस समय बड़े प्रेम से उसको प्रभु जरा संभाल के उसको समझाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से फिर वो भी हाँ हाँ प्रभु सही बताया आपने, मैं अभी दृढ़ता से करूँगा। ऐसे एक दूसरे को संभालना चाहिए। किसी की दृढ़ता कम हो रही है तो उसको थोड़ा बूस्ट देना चाहिए। ऐसे सारे भक्त आश्रम को ऐसे इकट्ठा रहना चाहिए, यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। और एक बात दृढ़ता के संबंध में ये है कि जितने भी दृढ़ता से हम करें, हम अपने प्रयास मात्र से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, संभव नहीं है। जैसे मान लो कि कोई बहुत अच्छा तैराक है, तैराक स्विमर, नेशनल चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमिंग में, हट्टा खट्टा शरीर है, मसल्स वसल बहुत बढ़िया है, बहुत शक्तिशाली आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, परंतु उसको यदि बंबई से दुबई जाना पड़े तैर के, समुद्र में तैर के जाना पड़े, वो क्या जा पाएगा? जा पाएगा कि नहीं? पक्का? अरे इतना स्ट्रांग आदमी है, क्यों नहीं जा पाएगा? हाँ, स्विमिंग पूल में जा पाएगा, लेकिन समुद्र इतना बड़ा है और कितने खतरे हैं वहां पर, कोई जंगली, कोई मछली आ गई, वो शार्क वार्क आ गया, कुछ खा गया, इतने ऊंचे ऊंचे लहरें आती हैं और इतनी लंबी, इतना लंबा अंतर है, हजारों किलोमीटर तक थोड़ी ना एक आदमी तैर के जा सकता है, भले वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति कितनी भी तपस्या क्यों ना करे, जितना भी दृढ़ क्यों ना हो जाए कि मुझे करना है, परंतु एक साधारण छोटे से जीव में उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बल पर अकेले वो भगवान के धाम को पार करे, ये भवसागर को पार करके भगवान के धाम को पहुंच जाए, नहीं है क्षमता। तो फिर ये प्रश्न उठता है, फिर क्या दृढ़ होने में फायदा है क्या? फिर आराम से रहते हैं ना, मनोरथे नासति धावतो बहि, इतना दृढ़ता दृढ़ता क्या फायदा है? जब दृढ़ बन के भी हमारे प्रयास अकेले से नहीं होगा तो क्या फायदा है? तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के तात्पर्यों में और एक छोटी सी कहानी बताई, और ये कहानी इस प्रकार से है कि एक चिड़िया थी, तो चिड़िया ने अपने अंडे रखे थे समुद्र के तट पे, और क्या हुआ कि समुद्र की लहरें आई, समुद्र की लहरें आकर वो अंडों को वापस वो पानी में खींच कर ले गए, अब वो अंडे गए समुद्र के अंदर। अब ये चिड़िया आई तो चिड़िया ने सोचा, अरे मेरे अंडे समुद्र ले गया तो क्या करना चाहिए? तो समुद्र ने जाके, चिड़िया ने जाके कहा समुद्र से कि मेरे अंडे लौटाओ। तो समुद्र ने कहा कि कौन हो तुम, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, विशाल है, और चिड़िया छोटी है, इतनी छोटी है, चिड़िया क्या कर सकती है समुद्र के सामने? तो समुद्र को थोड़ा घमंड हुआ कि मैं थोड़ी ना मानूंगा तुम्हारा, तुम कौन हो, मैं नहीं दूंगा वापस, जो करना है करो। तो फिर चिड़िया ने धमकी दे दी समुद्र को, कहा तो मेरे लंडों को लौटाओगे नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पानी को खींच लूंगी, तुम्हें सूखा कर दूंगी। तो समुद्र हंसने लगा, अरे तुम हो इतनी छोटी चिड़िया और बूंद बूंद पीती हो, और मेरे यहाँ जल कितना है तुम क्या एक एक बूंद से क्या पियोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो चिड़िया ने कहा मैंने खाली कर दूंगी। तो चिड़िया ने क्या किया, अपने चोंच में एक दो तीन बूंद जितने भी आते थे वो ले लिए, दूर जाके बूंदों को फेंक दिया, फिर से वापस आई, फिर पानी के दो तीन बूंद लिए, फिर वापस वहां डाल दिए। ऐसे करके लंबे समय तक ये चिड़िया कर रही थी, दो तीन बूंद लेना दूर जाके फेंक देना, दो तीन बूंद लेना दूर जाके फेंक देना। तो ऐसे करने से क्या समुद्र को खाली करना संभव है? नहीं है ना। लेकिन चिड़िया ने हौसला खोया नहीं। चिड़िया ने कहा मैं तो करके ही रहूंगी, जो भी कुछ हो मैं तुम्हारे जल को खाली करके रखूंगी। तो लंबे समय तक करती रही करती रही करती रही। उधर वैकुंठ से गरुड़ जी ने देखा कि अरे चमत्कार है, ये है इतनी छोटी और देखो इसकी दृढ़ता देखो कैसे है, जबकि साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये असंभव कार्य है, असंभव से भी परे। परंतु ये चिड़िया की दृढ़ता तो देखो, वो तो बस दृढ़ कि मैं तो करके रहूंगी। तो गरुड़ जी के हृदय में कृपा हो गई, चलो मुझे जाके ये चिड़िया को बचाना चाहिए। तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने समुद्र को धमकी दी, यदि तुमने चिड़िया के अंडों को लौटाए नहीं तो मैं तुम्हारे जल को खाली कर दूंगा। अब चिड़िया में और गरुड़ में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। जब चिड़िया ने धमकी दी थी तो समुद्र हंसने लगा था, लेकिन गरुड़ जी ने वही धमकी दे दी तो अब बहुत गंभीरता से लेना पड़ा इस बात को समुद्र देव ने। समुद्र देव ने जल्दी जल्दी हाँ गरुड़ जी आप बोल रहे हैं, तुरंत चिड़िया के अंडे आके दे दिए। तो भक्ति में भी हमारी ये हाल है, हालांकि हम माया को धमकी वगैरह नहीं देते हैं, किसी को धमकी नहीं देते हैं, परंतु तात्पर्य ये है कि अपने प्रयासों से समुद्र भवसागर पार करना असंभव है, फिर भी हमें वो प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास को देखकर, हमारे दृढ़ विश्वास दृढ़ निश्चय को देखकर फिर भगवान और उनके भक्त प्रसन्न होंगे, फिर वो हमें कृपा दे देंगे कि ये बेचारा परिश्रम कर रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है, चलो मेरे लिए इतना कर रहा है ये मेरा भक्त, मुझे कुछ कृपा देनी चाहिए उसको, फिर भगवान कृपा दे देंगे अपने भक्तों के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, भागवतम के द्वारा, स्वयं भी भगवान प्रकट होके बेड़ा पार कर सकते हैं भक्त का, और भक्त को ले जाएंगे समुद्र भवसागर पार करके उनके धाम ले जाएंगे। तो यद्यपि हमारे प्रयास या दृढ़ निश्चय से अकेले हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, फिर भी इसके बिना हम नहीं जा सकते, समझे आप? हाँ, आप में से कितने भक्तों ने गणित पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है कोई? अंग्रेजी में गणित के बारे में एक बात होती है, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब है कि हमारा जो दृढ़ निश्चय है, हमारी दृढ़ता भक्ति में है, ये आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है, समझे आप? आवश्यक है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, परंतु केवल मैं दृढ़ निश्चय से कर रहा हूं इसलिए मेरे तपस्या के बल पर मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। तो इन दोनों का संयोग जब होगा, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, तब हम जाएंगे बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम में. तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अरे ये माया इतनी बड़ी है, कितना कठिन है माया को हराना. इतने साल से हम जब भी कर रहे हैं लेकिन मन भी इतना हैरान करता है अभी भी हमको. हाँ, क्या करें, ये संभव है कि नहीं हमारे लिए? हमारे लिए नहीं है, परंतु भगवान के लिए आसान काम है. हमारे लिए असंभव है, भगवान के लिए चुटकी का खेल है. और भगवान तो चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, परंतु वो देखना चाहते हैं कि हम वास्तव में आना चाहते हैं कि नहीं, हम संघर्ष करना चाहते हैं कि नहीं उनके लिए. संघर्ष किए बिना क्यों भगवान हमको ले जाएंगे वापस? इस संबंध में प्रभुपाद जी ने और एक कहानी बताई थी कि एक बार एक परीक्षा हुई, इतिहास की परीक्षा, और उसमें कई प्रश्न पूछे गए. तो विद्यार्थियों ने सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया. तो एक छात्र था, एक प्रश्न था किसी एक राजा के बारे में बताओ, 10-15 मार्क का एक प्रश्न था केवल इस राजा के ऊपर. और ये बेचारे छात्र ने उस राजा का नाम भी नहीं सुना था. अब क्या करें? अभी तो उसने सोचा कि अभी राजा का नाम तो नहीं सुना है तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन कुछ तो लिखूंगा. तो उसने लिखना शुरू कर दिया, एक पन्ना, दो पन्ने, तीन पन्ने, चार पन्ने, पांच पन्ने, पाट 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 लिखता गया. बात इतनी ही है कि जो भी उसने लिखा वो 100% बकवास था, पूरा बकवास. एक शब्द का कोई अर्थ नहीं था. मैं जो भी शब्द उसने लिखे, ऐसे शब्द था ही नहीं शब्दकोश में, लेकिन केवल अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाए, जो मन में आया बकवास किया, 4-5 पेज भर दिए, लिखा बड़े अच्छे हैंडराइटिंग में लिख दिया, 3-4 ऐसे 5 पेज भर दिए. अब जब वो अध्यापक जांच कर रहे थे कि देखा ये राजा के बारे में क्या लिखा है इसने, 1 पेज 2 पेज 3 पन्ने 4 पन्ने 5 पन्ने, तो 15 मार्क था. तो अध्यापक को पहले तो गुस्सा आ गया, अरे क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है ये लड़का. तो फिर बाद में अध्यापक सोचने लगा कि अरे इसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा कौन है, राजा का नाम उसने सुना नहीं कभी, परंतु देखो बेचारे ने कितना परिश्रम किया है, हृदय से परिश्रम किया है, क्योंकि 5 पन्ने बकवास लिखना भी आसान नहीं है, है क्या? हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे, आप लोग भी करते थे कि नहीं मालूम नहीं. एक चैलेंज होता था कि आपको बहुत सारे वाक्य बोलने हैं, ठीक है, एक के बाद एक फटाफट वाक्य बोलने हैं, और किसी भी वाक्य का अन्य किसी भी वाक्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए. समझ गए आप? फटाफट बोलना है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, गोलगप्पा बहुत अच्छा है, फिर कृष्णदास बड़ा अच्छा है, ये कोई भी ऐसे बना दे, आसान नहीं है, बहुत सोचना पड़ता है. जब ऐसे संबंधित वाक्यों को बोल रहे हैं तो सोच में आसान हो जाता है बोलना. हम वर्णन कर रहे हैं कि घर से मैं मंदिर कैसे आया, पहले मैं घर से निकला, फिर सड़क पे आया, फिर बस में बैठा, फिर बस यहाँ पहुंची, बस से उतरा, बस से वापस आ गया, मंदिर में चल के आया. तो ये आसानी से हम बोल सकते हैं क्योंकि लॉजिकल कनेक्शन है सारे वाक्यों में, तो हमारा मन आसानी से संभाल सकता है. लेकिन ऐसे बोलना बड़ा आसान नहीं है, तो बकवास बोलना भी आसान नहीं है. और इसने 5 पन्ने बकवास लिख लिया, और एक भी, बहुत सोचना था ना उसको कि एक भी शब्द सही शब्द ना हो. तो इतने पन्ने लिख दिए तो टीचर सोचने लगा कि अरे इसने तो बहुत परिश्रम किया है, तो उसको मार्क्स तो देना चाहिए. तो उन्होंने पास मार्क दे दिया. यद्यपि उसने कोई बकवास लिखा था, कोई इतिहास के दृष्टि से सही नहीं था कुछ भी, परंतु इतना प्रयास किया उसने, इतना लिखा ना, 5 पन्ने लिखना तो कोई छोटी बात नहीं होती है ना, कितना परिश्रम किया, हाथ दुख रहा होगा उसका. तो ठीक उसी प्रकार से हमारी भी यही दशा है। भक्ति के बारे में हम क्या जानते हैं? हम बड़े बड़े विद्वान भी हो जाएं, फिर भी क्या जानते हैं? 700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, भागवतम के 1000 श्लोक भी कंठस्थ कर लिए, फिर भी भगवान के पार्षद बनना कोई छोटी बात है क्या? ऐसे मृत्यु की परीक्षा में जब कफ वात पित्त सब कंठ में आ जाएगा, कुलशेखर महाराज के शब्दों में, क्या भगवान का स्मरण करेंगे? कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे? इस कलयुग में भौतिक जगत में रह के शुद्ध पूरी तरह से कैसे होंगे? अकेले हमारे लिए तो संभव ही नहीं है, परंतु दृढ़ता से हम बने रहेंगे, लगे रहेंगे, तो जैसे गरुड़ जी ने कृपा की चिड़िया के ऊपर, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जैसे अध्यापक ने सोचा उस छात्र के बारे में, बेचारे ने इतना लिखा तो है ना, कुछ तो पास मार्क देना चाहिए। जब मैं स्कूल में था तो इसको ग्रेस मार्क्स कहते थे, आपके यहाँ क्या कहते थे मालूम? ग्रेस, ग्रेस मतलब कृपा, कृपा। किसी को 45 मार्क्स मिले हैं, 42 मार्क्स मिले हैं और पास मार्क 50 है, तो कभी कभी टीचर जो है 5, 6, 7 मार्क बढ़ा के दे दे, चलो पास कर दो, ढकेल दो बेचारे को, नहीं तो एक साल इसका छूट जाएगा। नहीं, क्योंकि कम से कम 42 मार्क्स 45 मार्क्स तो मिला है। लेकिन किसी के एक मार्क है, दो मार्क है, तब तो टीचर 48 मार्क्स तो नहीं दे सकता ना ग्रेस मार्क्स। तो उसी प्रकार से हम संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे, संघर्ष तो होना चाहिए कम से कम। और कैसा संघर्ष? गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, अपने मनमाने ढंग नहीं। तो जैसे हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार तपस्या करेंगे, परिश्रम करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, तो 40-40 मार्क्स 45 मार्क्स कुछ मिल गया, तब भगवान बोलेंगे चलो ग्रेस मार्क्स, चलो कृपा, कृपा दे देते हैं। तो कृपा के पात्र होने के लिए भी हमारा दृढ़ परिश्रम आवश्यक है। अब ये नहीं सोच सकते कि कृपा चाहिए ना, तो हम आके बैठ जाएंगे आराम से, हाथ के ऊपर हाथ बैठ के रख के बैठ जाएंगे, चलो कृपा आएगी, तो ऐसी कृपा नहीं आएगी। इसलिए दृढ़ता हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि भगवान देखें कि ये बेचारा भक्त कितना परिश्रम कर रहा है मेरे लिए, कितने ठोकर खा रहा है, फिर भी लगा हुआ है मेरे भक्ति में, तो इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए मुझे। इसलिए तो ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। जब ध्रुव महाराज केवल 5 साल के बच्चे थे, इतना दृढ़ निश्चय 5 साल के बच्चे के लिए कि राजमहल छोड़ के जंगल में जाए तपस्या करने के लिए। 5 साल के बच्चे तो हमेशा चंचल रहते हैं, खेल में मग्न रहते हैं, और ये जंगल में जा रहे तपस्या करने के लिए। तो जब जा रहे थे तो ऊपर से लक्ष्मी देवी और नारायण भगवान देख रहे थे। नारायण हंसने लगे तो लक्ष्मी देवी ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने बोल, देखो ये बच्चा 5 साल का है, लेकिन इसका दृढ़, इसकी दृढ़ता तो देखो, 5 साल की आयु में राजमहल छोड़ के जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए, जहाँ इतने सारे खतरे हैं, इतने जंगली जानवर हैं, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, खाने का कोई ठिकाना नहीं। तो लक्ष्मी देवी कृपालु हैं ज़्यादा नारायण भगवान से, तो आप कुछ कृपा कीजिए ना उसके ऊपर। तो फिर भगवान नारायण ने नारद मुनि को भेज दिया। तो नारद मुनि चले आए ध्रुव महाराज के सामने, फिर ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। उस समय भी नारद मुनि ने प्रयास किया ध्रुव महाराज को अपने दृढ़ निश्चय से हटाने के लिए। अरे ध्रुव, तुम तो इतने छोटे बच्चे हो, ये थोड़ी ना तपस्या करने का समय है, ये तो खेलने का समय है, जब तुम बड़े हो जाओगे, तरुण हो जाओगे, तब तुम जंगल में जाना, जंगल में कितने परेशानियां हैं, कितने खतरे हैं, तो अभी मत जाओ। तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि मुनिवर, आपके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम, यदि आप मुझे मदद कर सकते हैं मेरे इच्छा की पूर्ति के लिए, तो कृपा कीजिए, वरना तो कृपया आप हट जाइए रास्ते से ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो नारद मुनि भी बहुत प्रसन्न हो गए, क्या चमत्कार है ये बच्चा, कितनी दृढ़ता इसके अंदर। फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करो। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और फिर हम जानते हैं कि ध्रुव महाराज को प्राप्ति हुई भगवान की, और भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। स्थाना विलासी तपसि स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अभी तपस्या मैं कर रहा था आपको प्राप्त करने के लिए, अभी आप प्राप्त हो गए, जो कि मुनियों के लिए देवताओं के लिए प्राप्त करना कठिन है, लेकिन अब जब मैंने आपको प्राप्त किया, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, और आपने कृपा करके मुझे एक अनमोल रत्न प्रदान किया है, तब मुझे वो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। तो दृढ़ बनने का फायदा ये है, जब हम दृढ़ रहते हैं और फिर भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा मिलती है, फिर भगवान की कृपा मिलती है, और फिर वो भेंट वो उपहार हमें मिल जाता है जो कि सपनों में भी हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए किसी न किसी तरह से तो हमें भक्तों के संग में रहना है। तरह तरह की चुनौतियां आएंगी मन में, इंद्रियां हमें कष्ट देंगी, कोई कुछ भक्त कहेगा हमको बुरा लगेगा, कभी तबीयत की खराब होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, होता रहेगा ऐसे। लेकिन यदि हम इनको झेलते रहे, सहन करते रहे, और अपनी साधना सेवा बहुत श्रद्धा से हम करते रहें, सब कुछ ठीक रहेगा। अंत में ग्रेस मार्क्स पार कर देंगे भगवान। इसलिए हम सबको किसी न किसी तरह से रहना चाहिए, बस टिक के रहो। साची बात छे, बराबर छे कि नहीं, बराबर छे? तो बस ऐसे ही दृढ़ रहना आप सब भक्ति में। बाहर की दुनिया बोलती रहेगी, अरे क्या कर रहे हो ये सब भक्ति, ये थोड़ी ना आयु है ये सब करने के लिए। सब लोग बोलेंगे, आंसू करो छे। लेकिन बने रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो राधा गोविंद जी मंदिर के दृढ़ ब्रह्मचारी भक्तों की जय। आप सब दृढ़ भक्त है ना, छो कि नहीं? हरे कृष्णा, हाँ जय तीर्थ चरण। इसलिए तो फिलॉसफी चाहिए ना शास्त्र, इसलिए फिलॉसफी भगवद गीता श्रीमद् भागवतम आदि को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को पोषण मिलेगा और ऐसे शक्तिशाली बुद्धि से हम अहंकार को जीत सकते हैं। विद्या, अहंकार कहाँ से आता है? अविद्या से आता है। तो अहंकार को दूर करना है तो अविद्या को मिटाना है। अविद्या को मिटा सकते हैं विद्या से। विद्या आती है शास्त्रों से। तो जब हम शास्त्रों की बातें श्रवण करेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे, पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हो जाएगा सब। धीरे धीरे से सही दिशा मिल जाएगी। ठीक। ये सही है कि भौतिक इच्छाएं मन से उत्पन्न होती हैं, हमारे भौतिक मन से। परंतु प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक इच्छाएं कहाँ से प्रकट होती हैं? अच्छा प्रश्न है कि नहीं? कोई उत्तर देंगे? हाँ ठीक है, परंतु बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं ना। जो भक्त नहीं हैं, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं ना। वो लोग क्यों नहीं आते भक्ति में? भक्ति की इच्छाएं उनके अंदर क्यों नहीं आती हैं? वो लोग अपनी तरफ से जा रहे हैं, भगवान में लीन होना है, ये वो सब करते हैं ना। तो केवल शास्त्र हो तो वो लोग भी तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, सही है ना? तो फिर क्या कारण है? हाँ, ये सही बात है। संग, भक्तों का संग। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं कि भक्ति कहाँ से आती है। अब जब भक्ति की इच्छाएं है ना, ये भी तो भक्ति है ना, तो भक्ति कहां से आती है? भक्ति पुण्यों से नहीं आती है। पेड़ लगाओ, कुआं खोदो, गरीबों की मदद करो, है ना, अंधों की मदद करो, है ना, ये सब पुण्य कार्य है। इनका फल भी मिलेगा भौतिक स्तर पर, परंतु भक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक वस्तु भौतिक वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती, भौतिक वस्तु आध्यात्मिक वस्तु से उत्पन्न होती है। भौतिक सृष्टि भी आध्यात्मिक शक्ति से ही उत्पन्न होती है, परंतु आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकती। आध्यात्मिक वस्तु आध्यात्मिक वस्तु से ही उत्पन्न होती है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति केवल भक्ति से आती है। तो यदि हमारे अंदर भक्ति की इच्छाएं हैं, इसका मतलब है कि हमने भी ऐसे भक्तों की, भक्तों का संग किया है जो भक्त हैं, जिनकी भी ऐसी इच्छाएं थीं और हैं, और उनका संग करके हमें भी ये रुचि थोड़ी बहुत उत्पन्न हुई है मन में भक्ति करने की। हाँ, ये संग का प्रभाव है। जैसे नकारात्मक नेगेटिव दृष्टि से देखा जाए, जब लड़के लोग कॉलेज में जाते हैं क्या होता है, दूसरे लोग उसको बोलते चलो सिगरेट पियो, चलो शराब पियो, इधर पार्टी में जाओ, है ना, पहले तो इस बेचारे ने कभी सिगरेट पिया नहीं था, शराब पिया नहीं था, है ना, इच्छा आई नहीं थी, लेकिन कभी कुछ किया नहीं था ऐसे। लेकिन अभी उन लड़कों के संग में आके, अरे पी लो सिगरेट पी लो, उनको देख देख के, उनका संग कर करके उसकी भी इच्छा हो जाती, मुझे भी सिगरेट पीना है, मुझे भी शराब पीना है, ऐसे एवं था ना, एवं था, होता है कि नहीं? तो इतने घबरा क्यों रहे, बोलो। हाँ होता है ना, ऐसे ही तो होता है। ये है संघ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। बुरे संघ का बुरा परिणाम, अच्छे संघ का अच्छा परिणाम। जैसा संघ वैसा रंग। तो हमने कहीं ना कहीं कभी तो हमारे पूर्व जन्मों में भी हो, इस जन्म में भी भक्तों का संग किया है, उनसे हमने भक्ति की इच्छाएं प्राप्त की हैं, भक्ति करके वो हमें प्रेरणा मिली है, भक्ति की शक्ति हमें मिली है। ये अज्ञात रूप में भी हमें प्राप्त हो चुका होता है कभी कभी, इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। जैसे भक्त लोग नगर संकीर्तन करते हैं, सड़कों पे जाते हैं कीर्तन करते हुए, कोई व्यक्ति खड़ा है वहाँ पे, उसको कुछ पता नहीं हरे कृष्ण क्या है, क्या है, कुछ नहीं मालूम उसको, वो नाम संकीर्तन सुनता है, बस उसकी भक्ति शुरू हो गई। उसको अनेक जन्म लग जाएंगे परंतु उसकी भक्ति शुरू हो गई। आगे चल के फिर उसको कोई देता है, ये लो प्रसाद ले लो मंदिर का, वो मिठाई समझ के उसको ले लेता है, परंतु प्रसाद कार्य करता है। फिर और किसी का नाम है, उसके मित्र का नाम है गोविंद, अरे गोविंद इधर आओ, गोविंद क्या करो, ऐसे करो, गोविंद गोविंद गोविंद, कुछ उसको और सुकृति मिल जाती है। ऐसे कर करके ऐसे अनेक जन्मों के लिए के ऐसे इन अज्ञात सुकृतियों की पूंजी बढ़ाते 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 फिर उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, हाँ नहीं, पूर्वाभ्यास न तेनैव ह्रियसे यवतोऽपि सः, पूर्व अभ्यास न, कि पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण, भक्तों के संग के कारण, भक्ति जाने अनजाने में करने के कारण अभी विवश होकर उसका आकर्षण इस योग भक्ति योग के पथ में आ जाता है। तो हमारे मन में भक्ति की इच्छाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे ये संग का फल है, भक्तों के संग का फल है। और अभी इन इच्छाओं को और हमें तीव्र बनाना है, उसको पोषण करना है इसका, और आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब अच्छी तरह से अपनी भक्ति करना, इतना सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर विग्रह है, इतना अच्छा भक्त समाज है, बहुत सारे अवसर आपके लिए हैं जीवन सफल बनाने के लिए। तो इसको बहुत गंभीरता से हृदय पूर्वक स्वीकार करो और अगला जन्म नहीं लेना। कबूल है? अगला जन्म नथी जोईतो। ऐसे बोलना, नथी जोईतो मने। जोए छे? हरे कृष्णा। किसका इंपॉर्टेंस? सैफरन का। सैफरन ये एक वैराग्य का लक्षण है, भौतिक इच्छाओं को, ये अग्नि है, वो अग्नि जिसमें भौतिक इच्छाएं मिट जाती हैं। तो जिसकी भौतिक इच्छाएं मिट गई हैं, जो कम से कम इस रास्ते में हैं कि भौतिक इच्छाएं मिटाएं, भले प्रयास कर रहे हो, उसके लिए सैफरन। बाह्य दृष्टि से जिसने वैराग्य को स्वीकार किया है वो भी ऐसे करते हैं वर्णाश्रम के अनुसार, परंतु जो कई ऐसे पंथ भी हैं जहां पे सफेद कपड़े पहन के भी वैराग्य के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो वस्त्र जो भी हो, सफेद हो, पीले हो, गहरे रंग के हो, वो सब वैराग्य के लक्षण है। लेकिन आप में से थोड़े भक्त वो ऐसा वो लाल रंग पहनते हो ना, वो मायावादी रंग, वो मत पहनना, वो थोड़ा डार्क रंग है ना, उसको बदल दीजिए, अभी वो सही रंग नहीं है। ये सही रंग है, ये सही रंग आप जो पीछे पहन रहे हो ना, ये सही रंग है, ठीक है। आश्रम कहाँ है आप सबका? ऊपर वो बिल्डिंग में ऊपर है ना, हाँ, तीसरे माले पे, फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो गुनहगार पकड़े गए अभी सब, सबके गमछे वही दिखते हैं ना बालकनी के ऊपर। प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है आपके गमछों की, सारी दुनिया को क्यों देखना चाहिए आप कौन से गमछों से अपना शरीर पोछते हो, हाँ, वो बालकनी में नहीं रखो ऐसे सबको देखने के लिए। वो दीवार जो है जिस पे आप रखते हो, उसके आगे एक ऐसा रॉड लगा दो, रॉड पे कपड़े रख दो, वो दीवार में छेद हैं तो हवा भी आएगी, सूख भी जाएंगे कपड़े, दिखेगा नहीं किसी को, हाँ, लेकिन ऐसे उसके ऊपर मत डालना, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। करेंगे सब? हाँ, कभी करोगे? आज मतलब कब? हाँ, रॉड लगवा दो और वहीं पे सब कपड़े सुखाओ, ठीक है। ब्रह्मचारी आश्रम बिल्कुल साफ रखना, चकाचक रहना चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम, चाहे वो पैसेज हो, अपना कमरा हो, सीढ़ियाँ हो, दीवार हो, सब कुछ साफ होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये अंग्रेजी प्रोवर्ब है, कहावत है, प्रभुपाद जी इसको बार बार बोलते थे। अपने बाथरूम टॉयलेट को बिल्कुल साफ रखो। प्रभुपाद जी कई बार ऐसे बोल, जब वो वृंदावन में आके उन्होंने एक बार ऐसे किया, सीधे पब्लिक टॉयलेट में गए देखने के लिए। उन्होंने कहा कि टॉयलेट में जाके मुझे समझ में आएगा कि भक्तों की चेतना कैसी है, टॉयलेट शौचालय साफ रहा तो मैं समझूंगा कि भक्तों की चेतना ठीक है, शौचालय गंदा रहा तो समझूंगा कि ये सब तमोगुण में बस बैठे हैं सब, हाँ। तो अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखना, शरीर को स्वच्छ रखना, अपने निवास स्थान को स्वच्छ रखना, अपने परिसर को स्वच्छ रखना, अपने मंदिर और मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ रखना, ये सफाई सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं सोचो कि जिनकी सेवा दी गई है वो लेबर आते हैं कुछ करते हैं उन्हीं की सेवा है, नहीं। यदि कुछ कचरा देखो इधर उधर, उठा लो उसको, कचरे के डब्बे में सही जगह डाल दो, ठीक है। ये सफाई सतोगुण के अनुशीलन करने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। हर दृष्टि से सफाई अनिवार्य है, कबूल छे? हाँ, हाँ, पहला प्रश्न तो बड़ा लंबा है, अभी उसको उत्तर देने के लिए समय तो नहीं है, और कभी बात करेंगे। दूसरा प्रश्न जहाँ तक है, हाँ, सीनियर भक्तों की भी आवश्यकता है आश्रम में। तो जितने भी भक्त हैं, भले वो सीनियर हो, मिडिल हो, जूनियर, नए नए हो, जो भी हो, सबको अच्छी तरह से अपनी अपनी सेवा करनी चाहिए। ये आश्रम के अंदर संस्कृति अच्छी होनी चाहिए, कल्चर। साधु साधु को कैसे रहना चाहिए, साधुओं को साफ रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया स्वच्छता। अभी साधन वगैरह वो तो हमने बात कर ही ली, श्रवण कीर्तन करना, उसके बारे में तो प्रवचन में इतना कुछ हो गया। उसके अलावा अपने जीवन शैली के बारे में, चाहे हम नए हो, सीनियर हो, जो भी हो, हम सबको इस संस्कृति का पालन करना चाहिए। लोग अपेक्षा करते हैं कि आश्रम में लोग जो रहते हैं वो साधु हैं, तो साधुओं का व्यवहार कैसे होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है ना, आराम से प्रेम से आपस में रहना चाहिए, एक दूसरे के भाई भाई बन के रहना चाहिए, कोई छोटे भाई बड़े भाई हों कोई बात नहीं, लेकिन भाई के रूप में रहना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, अपने आप को वैष्णवों के दास समझ के रहना चाहिए। ये महाप्रभु के शिक्षणों का सार है। गोपी भर्तु हो पद कमलयोर दास दासानु दास है। घमंड नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ब्रह्मचारी के लिए, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीनियर हो, जूनियर हो, जो भी कुछ हो। खास करके जब हम कोई अच्छी सेवा करते हैं, प्रशंसा मिलती है, तो घमंड होने की संभावना रहती है, इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सदैव अपने आप को वैष्णवों के दास समझ के रहें, ठीक है, बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। ये एक चीज याद रखना आपका बाप, आप वैष्णव दास हैं, हम वैष्णव दास हैं, हम सब वैष्णव दास हैं। तो ऐसे भावना में रहेंगे तो भले कोई बहुत ज्यादा सीनियर डिवोटी न भी हो, फिर भी सब चल जाएगा। और जो है सीनियर, उनको ख्याल रखना चाहिए नए भक्तों का, और आपस में भी उनका संबंध अच्छा प्रेम का होना चाहिए। जो नए भक्त है उनको चाहिए कि वो भी बड़े कोऑपरेशन करें, सहयोग करें सीनियर भक्तों के साथ में, और आपस में भी एक दूसरे के साथ में। ऐसे वातावरण आश्रम में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अंतिम प्रश्न। हाँ हम साधन भक्ति करते रहेंगे तो श्रद्धा से निष्ठा अपने आप हो जाएगी। भजन क्रिया साधु संग, पहले आदो श्रद्धा ततः साधु संग स्याद भजन क्रिया तो निष्ठा। निष्ठा तो श्रद्धा, प्रारंभिक श्रद्धा से जब हम साधु संग करते हैं, भक्तों का संग करना, फिर भक्तों के संग में भजन क्रिया, हमारा साधन भजन श्रवण कीर्तन ये सब करना, सेवा ये सब करना, ये दो चीजें करेंगे तो अपने आप में निष्ठा आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अपनी भक्ति सेवा सब अच्छी तरह से करना। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर ब्रह्मचारी आश्रम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।